You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद एक महिला में शारीरिक और मानसिक बदलाव बहुत आते हैं। इस दौरान कई समस्याएं भी जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें से एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते हैं, और वो है डिप्रेशन। इसी बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मेलबर्न स्थित डॉक्टर अरुणा एस कुमार, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट है, वो जुड़ रही है हमारे साथ। आपका SBS पर स्वागत है अरुणा जी।
थैंक यू मस्की।
ये हफ्ते हम पेरिनेटल डिप्रेशन वीक मना रहे हैं 10 से 17 नवंबर तक, तो हमने सोचा कि आपसे बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत ये जानने से करेंगे कि ये पोस्टनेटल या पेरिनेटल डिप्रेशन जो है वो क्या है।
आपने बहुत सही कहा मौसकी कि ज़्यादातर ये बातें हम नहीं करते हैं, और इस बात का कोई कारण नहीं है कि हम क्यों नहीं करते बात। हमें ये खुल के इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पेरीनेटल डिप्रेशन या पोस्टनेटल डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग आप ये समझ लीजिए कि 6 में से 1 महिला को ये बीमारी की तरह से, या आप समझ लीजिए जैसे बाकी सब चीजें होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई या डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई, वैसे ये वाली तकलीफ हो सकती है। तो ये काफी कॉमन है, और हम ये कई बारी बहुत ही मुश्किल से डायग्नोज होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते।
ये बताइए कि ये जो डिप्रेशन है जो बच्चे के जन्म के बाद होता है या गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है, इसके लक्षण क्या है?
ज्यादातर तो ये बहुत ही खुशी का अवसर होता है फैमिलीज के लिए, दोनों पेरेंट्स के लिए। ये बहुत ही बड़ा चेंज होता है उनके लाइफ में जब उनका एक नया बच्चा ऐड होता है उनकी फैमिली में। और हॉर्मोन्स के कारण कई बारी क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम पोस्टनेटल ब्लूज बोलते हैं, जो 3-4 दिन बाद होती है। वो वाली कंडीशन नॉर्मल होती है और वो बहुत कॉमन होती है, 80% ऑफ द वुमेन में ये पाई जाती है। पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि ये पोस्टनेटल डिप्रेशन या जो सैडनेस होती है डिलीवरी के बाद, या अनहैप्पीनेस और किसी भी चीजों में मन ना लगना, या फिर आसपास कुछ भी अच्छा ना लगना सारा टाइम, उसके कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं कि सारा टाइम रोने का मन करता है, या खुद को कई महिलाएं ब्लेम कर रही होती है कि उनकी कारण कुछ गलत हो रहा है। ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। और इसको अगेन, जैसे मैंने बोला कि पोस्टनेटल ब्लूज जो 3-4 दिन बाद होते हैं डिलीवरी के, वो बहुत कॉमन है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स के कारण थोड़ा सा ऐसा फील करना नॉर्मल होता है। पर जब ये बहुत दिन तक स्ट्रेच कर जाता है तो उसको हम पोस्टनेटल डिप्रेशन बोलते हैं, और ये उन लोगों में होना ज्यादा चांसेस हैं जैसे कि माइग्रेंट फैमिलीज हो, या खास करके हमारे जो जिनकी फैमिलीज नहीं है यहाँ पे, उनका सोशल सपोर्ट कम है, उस सिचुएशन में इसका होना थोड़ा सा ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे में कभी कभी किसी भी चीज में मन नहीं लगता, और सारा टाइम दुखी रहने के इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं।
आपके पास बहुत केसेस आए होंगे डॉक्टर, क्या आप हमारे साथ एक ऐसा केस शेयर कर सकते हैं जिससे ये हमारी जो महिलाएं अभी सुन रही है उनको पता चले कि क्या होता है जब डिप्रेशन आता है तब?
थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि ये जैसे आपने बोला बहुत केसेस इस तरह के आते हैं, और बहुत मुश्किल से भी डायग्नोज होते हैं, क्योंकि महिलाएं अक्सर इस बारे में खुल के नहीं बात करती। तो ऐसा एक कहानी मेरे दिमाग में आ रही है जो बिल्कुल रिसेंटली हुआ था, कि एक पंजाबी लड़की जिनकी मैंने डिलीवरी की थी कुछ टाइम पहले, वो काफी उनके हस्बैंड ने रिपोर्ट किया कि एक दिन मुझे रात को फोन आया कि उनके वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो रोए जा रही है, और बिल्कुल उनका काफी, और कुछ दिन से ये चल रहा है कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, खाना पीना छोड़ दिया, नींद नहीं आ रही, और इवन बच्चे का केयर करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था इस सिचुएशन में. तो काफी सैड फील कर रही थी. जब मैंने उनको बोला कि वो आके दिखाएं तो उनका ये भी इस बारे में मन नहीं किया कि वो आके डॉक्टर को दिखाएं या किसी से इस बारे में बातचीत करें. तो ये सिचुएशन जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, ये काफी काफी कॉमन होता है. और ये अगर इस पे ठीक टाइम पे ना एक्ट किया जाए तो काफी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है टू द एक्सटेंट के काफी कई वुमेन में इवन सुसाइड के थॉट्स भी आने लग जाते हैं इस कारण. तो उस लड़की का जिसका मैं बता रही हूँ, उसका यही सिचुएशन हो गई थी कि वो बिल्कुल डिप्रेस रहती थी. जब मैंने उसको फाइनली देखा क्लिनिक में, बहुत इंकरेज करके हस्बैंड को बोला वो लेके आए, तो फिर वो कोई आई कांटेक्ट नहीं था उसका, बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही थी. जैसे सडनली उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी. पहले शी यूज्ड टू बी अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड ऑलवेज यूज्ड टू स्माइल. जब वो सडनली डिलीवरी के कुछ हफ्तों बाद उसका बिल्कुल नॉर्मल चीजों में मन नहीं लग रहा था. So it becomes, फिर finally हमने उसको psychiatrist को refer किया, help, psychologist help के साथ भी use किया. और फिर हमने उनके family members को भी involve किया पूरे care में, क्योंकि social support जो होता है वो भी इस situation में बहुत help करता है. और धीरे धीरे करके then she recovered.
क्या आपने ऐसा पाया है कि जो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटीज से जो आते हैं, जैसे कि भारतीय समुदाय है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई समुदाय के लोग बसते हैं, वो झिझकते हैं ये बात बताने से अपने डॉक्टर को कि उनको मन उनका मन नहीं लग रहा है बच्चे के जन्म के बाद? क्योंकि ये एक बहुत खुशी का अवसर होता है, ये मानना कि बच्चे के कारण उनको कोई खुशी नहीं है. क्या आपको लगता है कि वो झिझकते हैं?
आपने बिल्कुल सही कहा मुस्की. ऑस्ट्रेलिया में काफी मिक्स पॉपुलेशन है और जो कहीं और से लोग आए होते हैं उनका उनमें ज्यादा होता है ऐसा. रीजन इसका ये है कि एक तो कई लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल के डिफरेंट एनवायरनमेंट में आए हुए हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स इन लॉ जिनका सपोर्ट रहता है उनकी अपनी कंट्री में, वो उनको नहीं मिल पाता. शायद हो सकता है फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड शायद बिजी हो अपने वर्क में भी, और इसलिए उनको वो अटेंशन नहीं मिल पाती है. दूसरी एक कारण ये भी रहता है कि शायद वो खुल के लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक्सप्रेस ना कर पाते हों अपने आसपास, किसी को समझा ना पाए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर से खुल के बात ना कर पाए क्योंकि उनको हो सकता है कि वो उस लैंग्वेज में समझाना वो मुश्किल उनको थोड़ा लगे. और ऐसा काफी कॉमन पाया जाता है.
अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई समस्या से पीड़ित है या ये इफ दे आर सफरिंग, वो कहाँ मदद पा सकते हैं?
तो इस चीज के लिए हमारे पास हमेशा 24 घंटे हेल्प अवेलेबल है. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी उन महिलाओं को जिनको ये जो अभी सुन रही हैं, जो या तो खुद इस समस्या से जा चुकी हैं या फिर किसी और को जानती हैं जिनकी प्रेगनेंसी अभी रिसेंटली हुई है या फिर करंटली प्रेग्नेंट हैं, सबसे ज्यादा तो जरूरी है अवेयरनेस. तो सबसे ज्यादा फर्स्ट थिंग इज कि एजुकेशन होनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम है और इसको जल्दी फिक्स करना बहुत जरूरी है. और महिलाओं को चाहिए कि वो खुल के बात करें, यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स अगर ध्यान दें इस बात पे कि आप उनको दिखता है कि कोई महिला चाइल्ड बर्थ के बाद या फिर इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी इतना थोड़ा सा उनके मूड और बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो इस बात को जल्दी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है. दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि कहाँ से वो इस चीज की मदद ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसको हम जो हम पहुंचा सकते हैं आपके लिए. बियॉन्ड ब्लू, पैंडा और ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 24 आवर्स हेल्पलाइन है जिनकी, और आप उनको फोन करके किसी भी समय बात कर सकते हैं. वो आपको यहाँ तक कि आपको अपने लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कर सकते हैं केयर जहाँ पॉसिबल है. तीसरी बात ये है कि आप अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने जीपी से या फिर आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं जिन्होंने आपके केयर की है उनसे आप बिना हिचकिचाए बोलिए। इसमें कोई भी शर्म या स्टिग्मा की सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये उतनी ही कॉमन प्रॉब्लम है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें कुछ भी हेजिटेशन की बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और आप खुल के बात करें इस बारे में।
डॉक्टर अरुणास कुमार जी, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच मौसकी, आपका भी शुक्रिया।
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.